हमारी आज की कहानी है अभी बिगड़ा ही क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करें, अभी बिगड़ा ही क्या है। रात के 2 बजने वाले थे। अर्पित का अभी तक कोई पता नहीं था। सुहाग सेज पर बैठे बैठे मैं नर्वस हो गई थी। मेरी आंखें नींद के मारे बोझिल हो रही थी और दिल किसी अनजानी आशंका से धक धक कर रहा था। कहाँ रह गए वह? अब तक किधर घूम रहे हैं? क्या वह जानते नहीं? मटर गस्ती करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आज तो कम से कम वक्त पर घर आ जाते। मैं यह सोचकर पलंग से नीचे उतरी और खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी। बाहर बिल्कुल ही सन्नाटा था। मैं अपने आप से बातें करने लगी, ऐसी ठंड में ना जाने कहाँ जाकर बैठे हैं। घर के लोग भी कितने लापरवाह हैं। कहीं वह घर के अंदर ही तो कहीं नहीं सो गए, किससे पूछूं? मैंने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। कमरे में सब बेसुध सो रहे थे। बिस्तर जमीन पर ही लगाए गए थे। निकलने के लिए भी रास्ता नहीं था। मैं किसी तरह सबको लांघती हुई दूसरे कमरे में पहुंची। उस कमरे में भी कई लोग सोए हुए थे। मेरा जी चाहा कि बत्ती जलाकर सबके चेहरे को देखूं, पर इतने लोगों में क्या मैं अर्पित को पहचान पाऊंगी? अर्पित से पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी, केवल सास नंदे ही मुझे देखने आई थी। हाँ, अर्पित का फोटो मैंने अवश्य देखा था। सुंदर आकर्षक अर्पित एक ही नज़र में मुझे पसंद आ गए थे। रात बीतने को आई पर साजन अब तक निधारक थे। धीमे कदमों से मैं वापस लौट आई और रजाई ओढ़कर सो गई। अब मुझे केस सजा बिगड़ने या मेकअप खराब होने का डर नहीं था। वह अब क्या आएंगे? मैंने सोने का बहुत प्रयास किया पर नींद नहीं आई। आखिर वह क्यों नहीं आए? इस रात का तो लोगों को कितनी बेताबी से इंतजार रहता है। कहीं वह नपुंसक तो नहीं? संभव है वह इसीलिए कतरा रहे हों, पर ऐसा कैसे हो सकता है? दिखने में तो इतने हैंडसम और स्मार्ट, तो फिर क्या मैं उन्हें पसंद नहीं? उन्होंने तो मुझे अभी तक साक्षात रूप में देखा ही नहीं है। भावों के वक्त तो मेरे चेहरे पर घूंघट था, मांग में सिंदूर भरते समय शायद एक झलक देखी हो। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरे प्रीतम दोबारा मेरी सूरत देखना नहीं चाहते? व्याकुल होकर मैं पलंग से नीचे उतरी और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर खुद को ध्यान से देखने लगी। मैं अपनी रूप राशि पर स्वयं ही मुग्ध उठी। नहीं नहीं, सूरत तो मेरी अच्छी बली है, उनकी नाराजगी की वजह कुछ और होगी। आश्वस्त होकर मैं फिर रजाई में जाकर डूबक गई और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब हाथ में चाय का प्याला लिए सास ने मुझे जगाया तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। पल्लू से सिर ढककर मैंने सास के चरण स्पर्श किए तो उन्होंने आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। जल्दी से नहा लो बेटी, गुड्डू से भी नहाने के लिए कह देती हूँ। गुड्डू से? मुझे अजीब सा लगा। क्या वह यहीं पर है? कब आए? कुछ पता ही नहीं चला। मैं इतना सोचकर उठी और ब्रीफकेस में से कपड़े निकालने लगी। नहा धोकर मैंने हल्का सा श्रृंगार किया, फिर मुझे पूजा के कमरे में ले जाया गया। अर्पित वहाँ पहले से ही आसन पर विराजमान थे। मेरा जी चाहा कि पूछूं, रात को तुम कहाँ गायब हो गए थे? पर सबके सामने नहीं पूछ सकी। पूजन के बाद हमने सभी बड़े बुड्ढों के पांव छुए। घर में काफ़ी लोग थे पर पता नहीं सन्नाटा सा क्यों छाया हुआ था। शादी ब्याह में जैसा हंसी मजाक और खुशी का माहौल होता है वैसा कुछ भी नहीं था। मैं कमरे में बैठी दिन भर बोर होती रही। वैसे चाय पानी और खाने के लिए मुझसे कई बार पूछा गया पर मेरे पास आकर कोई नहीं बैठा। मुझे इस बात की आशंका होने लगी कहीं किसी नज़दीकी रिश्तेदार की मौत तो नहीं हो गई। पर रात में तो सब लोग नाच कूद रहे थे, अभी पूजन के समय भी महिलाएं गीत गा रही थी। शायद सभी काम में व्यस्त हैं। लेकिन अर्पित को क्या हुआ है? वह भी तो आकर नहीं झांक रहे। लोग तो सारा दिन अपनी नई दुल्हन के आसपास ही मंडराते रहते हैं। यह सोचते सोचते मैं सो गई। शाम को रिसेप्शन था। गुड़िया सी सजी धजी मैं महिलाओं से घेरी बैठी रही। सभी आगंतु मेरे रूप और दहेज में मिले सामान को सराह रहे थे। खाने पीने से निपटने 11 बज गए। मैं अपने कमरे में आ गई। पास वाले कमरे में बिस्तर बिछाए जा रहे थे। अर्पित उसी कमरे में टीवी देखने में मगन थे। अरे अर्पित, अपने कमरे में जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? शायद उनके नंदोई कह रहे थे। कमरे में क्या रखा है अपना? अर्पित का उदास स्वर सुनाई दिया। उनके नंदोई हंसे। कमरे में तो तुम्हारा सब कुछ है बरखुरदार। जीजा जी, मुझे इस तरह की बातें मत कीजिए। अर्पित झुंझला पड़े। हद करते हो, कल रात भर गायब रहे, आज भी जाना नहीं चाहते। अपने दुल्हन के अरमानों का तो जरा ख्याल करो, नंदोई ने समझाया। मेरे अरमानों का ख्याल किया था किसी ने? कि मैं किसी का खास ख्याल रखूं? अर्पित के स्वर में नाराजगी थी। यह सब बातें तुम अब भूल जाओ गुड्डू, उस लड़की का ख्याल मन से निकाल दो। समझ से काम लो भाई, दुल्हन लाखों में एक है। लाखों में एक है तो आप सब चाटो उसे, यह कहते हुए अर्पित बाहर निकल गई। मेरी आंखें भीग गई, मेरा अनुमान सच निकला। सचमुच यह शादी अर्पित की पसंद से नहीं हुई थी, शायद वह किसी और से विवाह करना चाहते थे। घर वालों ने जबरन उनके साथ मुझे बांध दिया था। मेरा दिल यह सब जानकर बैठने लगा। अब क्या होगा? मुझे इंतजार करना व्यर्थ है लगने लगा। कुंवारेपन में बरसों में अपने बिस्तर पर अकेली ही सोई थी, पर अब शादी के बाद अकेले सोना कितना अजीब सा लग रहा था। मुझे अपने ससुराल वालों पर क्रोध आने लगा। कैसे लोग हैं ये? क्या मिला इन्हें अर्पित का दिल तोड़कर? बेटे की मनपसंद लड़की से विवाह क्यों नहीं करा दिया? अर्पित भी कैसे पुरुष हैं? क्या वह प्यार करने का साहस रखते हैं तो इनकार करने का नहीं? कहाँ गए होंगे अब वह इतनी ठंड में? शायद उसी लड़की के पास गए होंगे जिसे वह चाहते हैं। यह सोचते हुए मैं ना जाने कब सो गई, मालूम ही नहीं हुआ। तीसरे दिन सुबह से ही मेहमानों ने प्रस्थान करना शुरू कर दिया। किसी व्यक्ति में कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा था, ना जानने वालों में और ना भेजने वालों में। जाने से पहले मेरी बड़ी ननद मुझसे मिलने आई। वह मेरे गालों को थपथपा कर बोली, मैं जा रही हूँ छवि, अपना ख्याल रखना। गुड्डू की बेवकूफियों पर ध्यान ना देना। अब तुमसे क्या छिपाना, उसकी सेक्रेटरी ने उसे फांस रखा है। पता नहीं गुड्डू उसके चक्कर में कैसे आ गया। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपने प्यार और सेवा से पति का दिल जीतने की कोशिश करना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं सिर झुकाए सब सुनती रही। सभी रिश्तेदार मुझे सहानुभूति से देखते हुए धीरज रखने और समझदारी से काम लेने की सलाह देते हुए चले गए। घर में रह गए बस हम चार प्राणी, सास ससुर अर्पित और मैं। अर्पित अब गेस्ट रूम में सोते थे, मेरी ओर वह गलती से भी नहीं झांकते थे। अर्पित के दुर्व्यवहार से छुप मेरी आंखें भर भर आती। सास मुझे प्यार से समझाती, तुम चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। गुड्डू का यह नाटक ज्यादा दिन नहीं चलेगा, उस कलमोही ने इस पर जादू कर दिया है। मैं आज ही जाके धोकड़े के बालाजी को भभूत लेकर आऊंगी, पंडित जी से कुछ उपाय भी पूछूंगी, भगवान सब अच्छा करेंगे। मैं चुपचाप सब सुनती रही। विवाह के बाद पति की ऐसी बेरुखी सहनी पड़ी, यह तो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। बड़ा नाज था मुझे अपनी सुंदरता पर। मैंने तो समझा था कि मुझे पाकर मेरे प्रीतम दुनिया को भूल जाएंगे, पर यह सब क्या हो गया? पति से प्यार भरी बातें करने, हनीमून मनाने, स्वच्छंद पंछी की तरह बाहों में बाहें डालकर घूमने के ख्वाब मिट्टी में मिल गए। माँ ने लाख समझाया, बाप ने डांटा डपटा, पर अर्पित मुझको अपनाने के लिए तैयार नहीं हुए। उनके पास हर बात का एक ही जवाब था, तुम अपने लिए जैसी बहू चाहते थे वैसी ले आए, अब मुझे चैन से जीने दो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। एक दिन शर्म संकोच छोड़कर मैं स्वयं उनके कमरे में जा पहुंची। अर्पित कोई पत्रिका पढ़ रहे थे, मुझे देखकर वह चौंक गए। मैं दरवाजा बंद करने लगी तो वो झुंझला पड़े, क्या करने आई हो यहाँ, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। क्षण भर के लिए मैं सहम गई, फिर हिम्मत करके धीरे धीरे पलंग की ओर बढ़ने लगी। वह आंखें तरेर कर बोले, सुना नहीं तुमने? क्या कह रहा हूँ मैं? मैं आगे बढ़कर उनके पैरों से लिपट गई। आप मुझसे इतना नाराज क्यों हैं? मेरा कसूर क्या है? आप मुझे किस अपराध की सजा दे रहे हैं? मेरा गला भर आया। अर्पित को कुछ जवाब देते नहीं बना। मैं उनके पांवों पर बड़ी सी सकती रही। कुछ देर बाद मैं आंसू पोंछ कर सीधी बैठी तो अर्पित नरम स्वर में बोले, देखो तुम मेरी पत्नी नहीं, इस घर की बहू बनकर आई हो। मेरे माँ बाप को बहू चाहिए थी, मैं ले आया। वे औलाद चाहेंगे तो उनकी खुशी के लिए मैं बच्चे भी पैदा करूँगा, पर मेरे दिल में मेरी लिली ही रहेगी। मैं लिली से बहुत प्यार करता हूँ। समाज चाहे हमारे रिश्ते को ना स्वीकारे, पर हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं यह सब सुनकर अवाक रह गई, तड़प कर बोली, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? आपको किसी निर्दोष लड़की से खेलने का अधिकार किसने दिया? अपने माँ बाप की खुशियों का तो आपको इतना ख्याल रहा, लेकिन किसी मासूम के अरमानों से कोई मतलब रखना क्यों नहीं चाहते आप? आपको शादी लिली से ही नहीं हो सकी तो यह आपकी कायरता है। आपको अपने माँ बाप को नाराज होना चाहिए था, बदला ले रहे हैं मेरे से। आंखें फिर मेरी बरसने लगी। अर्पित पलंग से उतर कर कमरे में टहलने लगे, फिर सीढ़ियाँ उतर कर घर से बाहर निकल गए। रो धो कर मैं भी थके कदमों से नीचे चली आई। मेरे भैया जब मुझे लेने ले जाने आए तो मैंने मुस्कुराकर सहज दिखने का भरसक प्रयास किया, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे छिपी उदासी को उन्होंने देख लिया। उस रात भी मैंने अर्पित को मनाने का प्रयास किया। देर तक मैं पति के पैर दबाती रही, पर वो आंखों पर हाथ रखे चुपचाप पड़ रहे। मैंने अर्पित के चेहरे से उनकी बाँह हटाई और अनुनय भरे स्वर में बोली, सुनो क्या आज भी मुझसे नहीं बोलोगे? कल सुबह तो मैं चली ही जाऊंगी। अर्पित मुझे एक टक देखते रहे, फिर ठंडे स्वर में बोले, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना लूँ? मैं मुस्कुराई, यह भी कोई पूछने की बात है? मैं इस घर में आई किस लिए हूँ? तुम्हारे लिए ही तो। अर्पित दृढ़ स्वर में बोले, मुझे पाने के लिए तुम्हें लिली को स्वीकार करना होगा। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। मैं लिली से शादी कर चुका हूँ, पैसे की कोई कमी मेरे पास नहीं है, लाखों कमाता हूँ। तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। अगर तुम यह वादा करो कि तुम मेरे और लिली के संबंधों को लेकर कभी झगड़ा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें अपना सकता हूँ। बोलो, मंजूर है? मुझसे एकाएक कोई जवाब देते नहीं बना। अपनी हालत पर मुझे रोना आ गया। हे भगवान, यह तूने क्या किया? मेरे कैसे दिन बीतेंगे इस घर में? कैसे सहूंगी मैं सौत की जिंदगी भर? ऐसी शादी से तो मैं कुंवारी ही भली थी। तभी अर्पित ने मुझे अपनी ओर खींचा। मैं अचानक सोच से बाहर आ गई, नहीं, इस पुरुष की मैं नहीं हो सकती, जो संपूर्ण रूप से मेरा नहीं हो सकता, मैं भी उसकी नहीं हो सकती। क्यों बांटू मैं अपनी मांग का सिंदूर किसी और औरत के साथ? क्यों मैं जीवन भर बेवजह तिरस्कार सहूं? जब अर्पित ही मेरे नहीं तो फिर इस घर में किसके लिए मैं पड़ी रहूं? पति का प्यार पाना मेरा अधिकार है, प्यार के लिए मैं घड़ी घड़ी इनके आगे अपना आंचल क्यों फैलाऊं? क्या कमी है मुझ में? अभी बिगड़ा ही क्या है? विवाहित होकर ही अब तक मैं कुंवारी ही तो हूँ। मैं अपना सब कुछ समर्पित करूँगी किसी ऐसे पुरुष पर जिसे वास्तव में मेरी जरूरत हो, वह मुझे हंस कर स्वीकार कर ले। नहीं चाहिए मुझे लाखों की कमाई, कोई चार दिन की बात होती तो मैं सह भी लेती। लिली का सिर दर्द तो जिंदगी भर का है। मैंने होले से अपनी बाँह छुड़ाई और धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर गई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।